पृष्ठ संख्या एक, अध्याय एक, राधा कृष्ण का विकास। ईसा से कम 400 वर्ष पूर्व वासुदेव की पूजा चल पड़ी थी। धीरे धीरे वासुदेव और नारायण को एक ही समझा जाने लगा था। इतना निश्चित है कि ब्राह्मण काल के अंत में नारायण को परम देवत्व माने जाना लगा था। ब्रैकेट में शतपथ ब्राह्मण 12:3-4 ब्रैकेट बंद। ऋग्वेद में भी नारायण की प्रधानता का प्रमाण पाया जाता है। ऋग्वेद 12:6-1 ब्रैकेट बंद। तैतरीय आरण्यक 10-11 में नारायण को परम देवत्व के रूप में माने जाने की बात पाई जाती है। महाभारत और पुराणों में नारायण और विष्णु को अभिन्न समझा गया है, परंतु आरंभ में नारायण और विष्णु का कोई संबंध दिखलाई नहीं पड़ता। इसमें संदेह नहीं कि विष्णु वैदिक युग के एक महत्वपूर्ण देवता थे। ब्रैकेट में ऋग्वेद 1:155-5 से लेकर 1:154-5 इत्यादि ब्रैकेट बंद। ब्राह्मण काल में तो विष्णु सर्वोच्च देवता हो चुके थे। ब्रैकेट में ऐतरेय 1:1-14:1-1 जान पड़ता है। उस युग में नारायण और विष्णु में कोई भेद नहीं समझा जाता था। ब्रैकेट बंद। पुराणों से पता चलता है कि विष्णु का स्थान श्वेत द्वीप था। कथा सरित सागर में इसी को स्वर्ग बतलाया गया है। भंडारकर का कहना है कि नारायण का श्वेत द्वीप वैसा ही है जैसा विष्णु का वैकुंठ, शिव का कैलाश या श्री कृष्ण का गोलोक। महाभारत में लिखा है कि नारद मुनि ने इसी श्वेत द्वीप से भक्ति का आनयन किया था। इस श्वेत द्वीप को लेकर यूरोपियन पंडितों ने बड़ी बड़ी थ्योरियां खड़ी की है। किसी ने कहा है कि यह अलेक्जेंड्रिया है, दूसरे ने बैक्टीरिया बतलाया है और तीसरे ने इसी कुल हृत कहा है। समझ में नहीं आता कि इस श्वेत द्वीप के लिए इतना बाविला क्यों खड़ा किया गया है। यह तो एक स्वर्ग की कल्पना मात्र है। इसका जो वर्णन महाभारत में है उसके किसी अंश से यूरोप के किसी प्रदेश का मिलना असंभव है। यूरोपियन पंडित सफेद होते हैं, इसलिए सफेद द्वीप का नाम आते ही कह उठते हैं कि यह द्वीप निश्चय ही यूरोप होगा। कम से कम यूरोपियनों से उनका संबंध तो होगा ही। यह तो उसी प्रकार का कथन है जैसे टेम्स नदी का तमसा के साथ नाम साम्य देख कोई कह उठे कि वाल्मीकि का आश्रम निश्चय ही टेम्स नदी के किनारे अर्थात इंग्लैंड में था, और चूंकि वहीं पर कवि ने प्रथम श्लोक बनाया था इसलिए भारतीयों को कविता बनाने की शिक्षा निश्चय ही अंग्रेजों ने दी है। इस प्रकार देखा जाता है कि नारायण ब्राह्मण काल में परम देवत्व के रूप में स्वीकार कर लिए गए थे। जब सात्वतों के वासुदेव की पूजा प्रधान हो गई तो महाभारत के युग में वासुदेव और नारायण को एक ही देवता समझा जाने लगा। एक क्षीरसागर शाही शंख चक्रादि धारी विष्णु और वैदिक विष्णु एक नहीं है। प्रथमोक्त विष्णु किसी आर्यतर जाति के देवता हैं जो बाद को वैदिक विष्णु से मिलाकर एक कर दिए गए हैं। नारायण का संबंध जल से था, यह बात महाभारत से सिद्ध है, पर शंख और सर्प आर्य उपादान नहीं है। लेखक का लेख और उस पर अध्यापक क्षिति मोहन सेन की टिप्पणी। दूसरा वैष्णविज्म सैविज्म एंड माइनर रिलीजियस सिस्टम पृष्ठ संख्या 32। तीसरा ग्रियर्सन जनरल ऑफ रॉयल एसआईटी सोसाइटी 1907। चौथा कैनेडी जनरल ऑफ रॉयल एसआईटी सोसाइटी 1907। पांचवा त्रिया कांता कांता परम पुरुषः कल्पतरो द्रुमा भूमिश चिंता मणि गणमयी तोयम मृतम कथा गानम नाट्यम गमनम अपि वंशी प्रिय सखी चिदानंदम ज्योति परमपि तदा स्वाधम अपि च निमेषार दाख्यो वा वर्जिति नहि यत्रापि समयः स यत्र क्षीराब्धि स्त्रवति सुरभिभ्यश्च सुमहान् भजे श्वेत दीपम तमः मिह गोलोकम इति यम विन्दत्ते संतः क्षिति विरल चारा कतिपय ब्रह्म संहिता 36। पाणिनि के एक सूत्र में 4:1-98 से पता चलता है कि वासुदेव उस समय देवता समझे जाते थे। पाणिनि का काल कुछ निश्चित नहीं है, पर इतना निसंकोच कहा जा सकता है कि यह काल ईसा से 400 वर्ष कर्म से कम पुराना नहीं है, परंतु बौद्ध जातकों ब्रैकेट में घट जातक से यह बात प्रमाणित की जा सकती है कि वासुदेव की पूजा और भी पुरानी है। बद्ध देव का पुनर्जन्म में वासुदेव होना सिद्ध करता है कि जातक युग में वासुदेव की महिमा प्रतिष्ठित हो चुकी थी। जैन शास्त्रों में भी महावीर स्वामी का पूर्व भाव में वासुदेव होना बताया गया है। जेकोबी ने एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स के अवतार शीर्षक लेख में बताया है कि जैनों की सारी वंशावली हिंदुओं के अनुकरण पर है। वासुदेव के आदर्श पर उन्होंने जो वंशावली की कल्पना की है उनमें नौ वसुदेव, नौ वसुदेव, नौ बलदेव और नौ प्रतीक वासुदेव की कल्पना है। इन बातों से सिद्ध होता है कि उस युग में वासुदेव खूब प्रतिष्ठित देवता हो चुके थे। सभी संप्रदायों के लोग अपने नेताओं को वासुदेव का अवतार सिद्ध करना चाहते थे। स्वयं द्वारिकापति श्री कृष्ण के युग में भी पुंड्रवंग किरातों के राजा पुंडरीक ने अपने को वसुदेव कहकर पूजवाना शुरू कर दिया था। कृष्ण ने इसे मारकर अपना वसुदेवत्व स्थापित किया था। इन बातों से सिद्ध होता है कि वसुदेव की पूजा ईसा से बहुत पुरानी है। पृष्ठ संख्या 2। यहाँ तक आकर वसुदेव कृष्ण, विष्णु और नारायण एक हो चुके थे, पर गोपाल कृष्ण का अब तक इनसे कोई संबंध नहीं था। इस प्रकार किसी देवता का नाम न तो महाभारत के नारायणीय मत में आया है और न पतंजल महाभाष्य में। नारायणी में वसुदेव के अवतार का उल्लेख है, इसमें कंस वध की भी चर्चा है, पर उसमें गोपाल कृष्ण का नाम नहीं है। गोपाल कृष्ण के द्वारा मारे गए राक्षसों का भी कोई उल्लेख नहीं मिलता। गोपाल कृष्ण संबंधी कथाओं का वर्णन हरिवंश और वायु पुराण में उपलब्ध होता है। भागवत पुराण में कंस वध, पूतना तथा अन्य राक्षसों का वध आदि कथाओं का विस्तृत वर्णन है। इसमें कंसारी कृष्ण और गोपाल कृष्ण को अभिन्न समझा गया है। इन ग्रंथों के बनने के समय निश्चय ही गोपाल कृष्ण की कथा खूब प्रचलित रही होगी। महाभारत के ही सभा पर्व में शिशुपाल के मुख से ही ऐसी बातें कहलाई गई है जिनमें कृष्ण की गोकुल वाली कथा का आभास पाया जाता है। भंडारकर कहते हैं कि ये बातें बाद की प्रक्षिप्त होंगी, क्योंकि शांति पर्व में भीष्म के मुंह से जो कृष्ण स्तुति कराई गई है उसमें इन बातों की चर्चा नहीं है। गीता में गोविंद शब्द आया है, इसे कुछ विद्वान गोपेंद्र शब्द का प्राकृत रूप बतलाते हैं। पाणिनि ब्रैकेट में 3.1.138 ब्रैकेट बंद पर वार्तिक लिख कर कात्यायन ने इस शब्द को सिद्ध किया है। भंडारकर के मत से इस शब्द का संबंध ऋग्वेद के गोविंद ब्रैकेट में इंद्र से अधिक संभव है। इन सारा बातों का निष्कर्ष निकालकर भंडारकर कहना चाहते हैं कि ईसवी सन के प्रारंभ में कृष्ण के बाल्यकाल में गोकुलवास की कथा प्रचलित नहीं होगी। कृष्ण आभीर नामक एक घुमक्कड़ जाति के बाल देवता हैं। इन आभीरों ने मधुपुर से लेकर आनर्त और अनूप तक के प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था। इन्हें महाभारत में डाकू और मलेच्छ कहा गया है। इन्होंने अर्जुन पर, जबकि वे विष्णुओं की स्त्रियों को लिए जा रहे थे, आक्रमण किया था। उस समय ये पंचानंद के पास रहते थे। विष्णु पुराण और वराहमिहिर ने इन्हें अपरांत, कोंकड़ और सौराष्ट्र के आसपास रहने वाला बतलाया है। वर्तमान में अहिर इन्हीं आभीरों की संतान है। कैनेडी के मत से श्री कृष्ण जिस घुमक्कड़ जाति के बाल देवता हैं, उनकी वर्तमान संतान है जाट और गुजर। काठियावाड़ में पाई गई एक लिपि से जाना जाता है कि शक 102 में आभीर राज्य करने लगे थे। पृष्ठ संख्या 3। कैनेडी ने बतलाया है कि 5वीं-6वीं शताब्दी में आभीरों का राजा होना यह सिद्ध करता है कि वे बहुत पूर्व आ चुके होंगे, पर काठियावाड़ के लेख से पता चलता है कि ईसवी सन की 2री शताब्दी में आभीर उच्च पदाधिकारी और शासक होते थे। निश्चय ही इनका आना बहुत पूर्व हुआ होगा। वायु पुराण में, जो कि बहुत पुराना पुराण माना जाता है, आभीर राजाओं की वंशावली का उल्लेख है। इन सारी बातों को देखकर यह कहा जा सकता है कि आभीर ईसवी के सन के पहले ही इस देश में आकर बस गए होंगे। आभीरों के बाल देवता श्री कृष्ण की कथा का सबसे पुराना उल्लेख हरिवंश में पाया जाता है। भंडारकर ने इस ग्रंथ का काल सन ईसवी की 3री शताब्दी के बाद माना है, क्योंकि उनमें दिनार शब्द लैटिन का उल्लेख है। आधुनिक शोधों से जाना गया है कि दिनार शब्द ईसवी सन के पूर्व में ही इस देश में पहुंच चुका था, इसलिए कहा जा सकता है कि हरिवंश का काल और भी पुराना मानने में दिनार शब्द बाधक नहीं होगा। यदि ऐसा माना जा सके तो यह भी कहा जा सकता है कि आभीरों के बाल देवता श्री कृष्ण की कहानियों का उक्त ग्रंथ में स्थान पाना निश्चय ही यह सिद्ध करता है कि उनका अस्तित्व सन ईसवी से पुराना है। वेबर, ग्रियर्सन, कैनेडी, भंडारकर, सबका कहना है कि बालकृष्ण की ईसा मसीह की कथा का भारतीय रूप है। इस कथा को सीरिया से चलकर आई हुई घुमक्कड़ आभीर जाति ने भारतवर्ष में परिचित कराया। भंडारकर के शब्दों में वे आभीर ही संभवतः बाल देवता की जन्म कथा और पूजा तथा उनके प्रख्यात पिता का उनके विषय में यह अज्ञान कि वह उनके पिता है और अपराधों के वध की कथा अपने साथ ले आए। अंतिम दो का संबंध इन कथाओं से है, एक नंद का यह न जानना कि वे कृष्ण के पिता हैं और दूसरा कंस द्वारा निरअपराध बालकों का वध। कृष्ण की बाल लीला में जैसे धेनु का, जो गधे के रूप में था, मारना आभीर अपने साथ लाए थे, अन्य कथाएं उनके भारत आने के बाद विकसित हुई। यह संभव है कि वे अपने साथ कृष्ण नाम भी ले आए हो, और संभवतः यही नाम वसुदेव कृष्ण के साथ भारतवर्ष में बाल देवता के एकीकरण का कारण हुआ हो। गोवानीज और बंगाली प्रायः कृष्ण को किष्ट कुष्ट या कृष्टो के रूप में उच्चारण करते हैं। पृष्ठ संख्या 4। वेबर ने जिन युक्तियों के बल पर श्री कृष्ण जन्म की कथा को ईसा मसीह की कथा जन्म से मिलती हुई सिद्ध किया था, उनकी निस्सारता ऐतिहासिक प्रमाणों से सिद्ध हो चुकी है। वेबर का सारा तर्क कृष्ण जन्माष्टमी के अनुष्ठानों और अजंता के चित्रों के ऊपर निर्भर है। कीथ ने प्रथम अंश को असंगत बताया है। उन्होंने कहा है कि याद रखना चाहिए कि ये अनुष्ठान ख्रिस्ट पूर्व है। कैनेडी ने यह तो स्वीकार किया है कि अजंता की गुफाओं में ईसाई का प्रभाव है, पर वेबर ने इस कथन को कि देवकी का वर्जिन रूप से चित्रण मिस्र से होकर आया होगा, उन्होंने ऐतिहासिक भूल माना है। उनका कहना है कि मोडोना लेकलेंस का परिचय मिस्र में 5वीं शताब्दी तक अज्ञात था। यही नहीं, ईसा का वर्जिन का स्तन्यपान कराना तो उन्होंने 12वीं शताब्दी की कल्पना बतलाई। वेबर जिस चित्र पर अधिक जोर देते हैं उसमें स्तन्यपान की बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि वेबर के मत से वह ईसा से स्तन्यपान का अनुकरण है। यदि कैनेडी की बात सच है तो ईसा के स्तन्यपान की घटना अजंता अंकन से कम 700 वर्ष बाद की ठहरती है। फिर भी पंडितों का एक दल बाल कृष्ण को क्राइस्ट का रूपांतर कहने में जरा भी नहीं हिचकता। हम ऊपर बता चुके हैं कि आभीरों का ख्रिस्ट पूर्व काल में भारतवर्ष में आना एकदम असंभव नहीं है, मगर यह तो कोई जरूरी बात नहीं है कि बाल कृष्ण की कथा का पतंजलि या अन्य समकालीन ग्रंथों और शिलालेखों में न पाया जाना यह भी सिद्ध कर दे कि ये आभीर सीरिया से ही चलकर आए थे। 1. भंडारकर का यह अनुमान निसंदेह असंगत है, जिन्होंने भाषा शास्त्र से कुछ परिचय प्राप्त किया होगा वे आसानी से इसकी असंगति समझते हैं। भंडारकर जैसे पंडित ने कैसे इस प्रकार का अनुमान किया, यह सोचकर आश्चर्य होता है। पर और भी आश्चर्यजनक यह है कि इस पर यूरोपियन पंडितों का आस्फालन। स्वर्गीय तिलक ने एक जगह वेन शब्द का संबंध ग्रीक वेनस से दिखला कर यह सिद्ध करना चाहा है कि वेदों में शुक्र ग्रह की चर्चा है। मैकडोनाल्ड और कीथ ने वैदिक इंडेक्स में कई जगह इस अनुमान को अति असंभव मोस्ट इम्पॉसिबल मोस्ट इम्प्रूवेबल कहा है, तथापि उन्हें संतोष नहीं हुआ और एक जगह एक और भी उद्गारपूर्ण टिप्पणी जड़ दी। तिलक्स कंजक्टर दैट द प्लैनेट्स आर रेफर्ड टू हियर इज ऑब्जर्व, वैदिक इंडेक्स दूसरी जिल्द पृष्ठ संख्या 132। परंतु ये ही यूरोपियन पंडित भंडारकर के इस अनुमान को इतना महत्व देते हैं। हम तिलक की बात के समर्थक नहीं, परंतु पूछना चाहते हैं कि तिलक का अनुमान क्या इससे अधिक ऑब्जर्व है। यूरोपियन पंडितों से अधिक इस बात को कोई और नहीं जानता कि क्राइस्ट का मूल उच्चारण वही नहीं है आज अंग्रेजी में प्रचलित है, और उस पर से बंगाली और या गोआनीज उच्चारण क्रिस्टो या किस्टो होना एकदम असंभव है। पृष्ठ संख्या 5। आभीर इसी देश की पुरानी जाति हो सकती है, उसके अपने बाल देवता भी हो सकते हैं। श्री कुमार स्वामी ने कहा है कि आभीर शब्द द्रविड़ भाषा का है, जिसका अर्थ होता है गोपाल। यह कहा जा सकता है और कहा भी गया है कि आभीरो ब्रैकेट में अहिर जाट गुजरो ब्रैकेट बंद की मुखाकृति शरीर गठन आदि द्रविड़ नहीं बल्कि सीथियन है। कैनेडी इन्हें सीथियन भी मानते हैं, पर इससे उक्त अनुमान में कोई बाधा नहीं पड़ती। हो सकता है कि आभी नाम की कोई द्रविड़ जाति जिसका संबंध भक्ति प्रधान और देवता बालकृष्ण हो पहले से ही इस देश में रहती हो, बाद को ये सीथियन जातियां आकर इनका धर्म ग्रहण करके अपने को आभीर कहने लगी हो। आभीर शब्द का द्रविड़ होना और देवता का कृष्ण काला होना यह अनुमान का सहायक होना बतलाया जाता है। यह बात ऐतिहासिकों के ऊहापोह का विषय बनी हुई है कि बाहर से आई हुई कितनी ही जातियां ब्राह्मण धर्म में शरण न पा सकी थी, मगर इस मत पर हमारा आग्रह नहीं है। कारण यह है कि यह सारा का सारा अनुमान एकमात्र आभीर शब्द पर अवलंबित है। जिसे किसी एक विद्वान ने द्रविड़ शब्द बतलाए हैं, मगर यह बात न भी हो तो कैसे यह माना जा सकता है कि कृष्ण क्राइस्ट के रूप हैं? यह तो मानी हुई बात है कि ईसा का जन्म एशिया के देश और जाति में हुआ था। क्या यह बात संभव नहीं है कि ईसा की जन्म कथा इन्हीं सीथियन आभीरों के बाल देवता की जन्म कथा का अनुकरण हो? क्या संसार की अन्य जातियों की कथाओं का प्रभाव भारतवर्ष की धार्मिक कथाओं पर ही पड़ता है, ईसाइयों पर नहीं? क्या ईसाइयत के जन्म के पूर्व ये आभीर और इनके बाल देवता थे ही नहीं? क्या एक ही सामान्य मूल से ईसा और कृष्ण के पृथक विकास की बात सोची ही नहीं जा सकती। यह तो अब सबने स्वीकार कर लिया है कि यूसुफ या जोसेफ शब्द बोधिसत्व का ही रूपांतर है। जिस प्रकार यह कहना अन्याय है कि कृष्ण क्राइस्ट के रूपांतर हैं, उसी प्रकार यह कहना भी अनुचित है कि क्राइस्ट कृष्ण के रूपांतर हैं। वेबर की युक्तियों से निस्सारता की जेकोबी ने सिद्ध किया है। ग्रियर्सन साहब बता चुके हैं कि ईसवी सन की पहली शताब्दी में दो ईसाई संत भारत के उत्तर पश्चिमी प्रदेशों में आ चुके थे। यह भी सिद्ध हो चुका है कि ईसाई से बहुत पूर्व आभीरों का आगमन संभव है। ईसा मसीह की मृत्यु के बाद उनकी जन्म कथाएं उनके शिष्य से प्रशिष्यों ने लिखी थी। एक आर्यों में से भी कुछ जो दक्षिण में जा बसे थे अपने को द्रविड़ कहने लगे थे। द्रविड़ ब्राह्मण ऐसे ही हैं। दूसरा एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स के अवतार शीर्षक लेख में पृष्ठ संख्या 6। फिर क्या यह संभव नहीं कि सेंट लुक लिखित सुसमाचारों में आभीरों के बाल देवता का प्रभाव पड़ा हो जो भारतवर्ष में देवकी पुत्र कृष्ण के रूप में प्रख्यात हो चुके थे। यह बात निश्चित रूप से ही नहीं कही जा सकती, पर यूरोपियन पंडितों के आरोपों की अपेक्षा इस बात की संभावना अधिक है, क्योंकि कृष्ण अगर ईसा के रूपांतर होते तो राधा और गोपियों की कथा जो निश्चय ही आभीरों की देन है उनमें नहीं आ सकती है, क्योंकि मथुरा के कृष्ण से देवकी पुत्र कृष्ण वासुदेव या द्वारिका के राजा कृष्ण नहीं, मनुष्य का कोई संबंध नहीं, वे विशुद्ध देवता है। दूसरी ओर क्राइस्ट या ईसा मसीह मनुष्य और ईश्वर के मिले हुए रूप हैं। देवता में कल्पना की प्रधानता रहती है, मनुष्य में गौणता। कोई जाति जब किसी अन्य जाति के किसी मत या कल्पना को अपनाकर अपने नायक मनुष्य से संबंध करती है तो उतना ही अंश ग्रहण करती है जितना उस मनुष्य की जीवन घटनाओं के साथ अविरुद्ध भाव से घुल मिल सके। ईसा मसीह के लिए अगर कृष्ण की कथाओं का ग्रहण किया गया होगा तो उतना ही अंश जितना उनके ब्रह्मचारी जीवन का अविरोधी हो, पर बाल कृष्ण के लिए तो यह तक सीमा नहीं रहेगी, क्योंकि जो हो ये सारी बातें कुछ महत्व नहीं रखती। असल बात यह है कि ईसा और कृष्ण की कथाएं भारत वर्ष में आकर बसी हुई आभीर जाति के एक ही भंडार से ग्रहण की गई होगी। यह बात सर्वसम्मत है कि कृष्ण का वर्तमान रूप नाना अवैदिक और वैदिक आर्य अनार्य धाराओं के मिश्रण से बना है। कैनेडी ने इसके 3 खंड किए हैं। एक, द्वारिका का राजा कृष्ण जो अपने धूर्त कृत्यों के लिए महाभारत में बहुत विख्यात है। दूसरा, निचली सिंधु उपत्यका का अनार्य वीर जो आधा देवता है, इसने राक्षस पैशाच आदि निंद विवाह किए थे। और तीसरा, मथुरा का बाल कृष्ण। जेकोबी ने बताया है कि पाणिनि से पूर्व वासुदेव देवता रूप में पूजे जाने लगे थे। छांदोग्य उपनिषद में घोर अंगी रस के शिष्य देवकी पुत्र की चर्चा पाई जाती है। इस कृष्ण ऋषि और देव वासुदेव के योग से एक श्री कृष्ण ब्राह्मण युग के अंत में प्रतिष्ठित हो चुके थे। इन्हीं में बाद को एक कृष्ण आ मिले, एक मथुरा के बाल गोपाल और दूसरा विष्णुओं के नायक राजपूत कृष्ण। इस प्रकार कृष्ण का विकास हुआ। साथ ही यह भी समझ रखना चाहिए कि इस कृष्ण में वैदिक देवता विष्णु और नारायण भी मिल गए थे। ईसवी सन के पूर्व ही वासुदेव भगवान या परम देवत्व के रूप में पूजित होने के लगे। और आर गार्वे की गीता संबंधी शोधों के आधार पर डॉक्टर ग्रियर्सन ने स्वीकार कर लिया था कि गीता का कुछ अंश ख्रिस्त पूर्व में रचित हो गया था। एक, इसी संत के लिखे ईसा के जीवन चरित्र को पंडितों ने इस प्रसंग में बार बार उद्धृत किया है। पृष्ठ संख्या 7। उससे श्री कृष्ण का परम देवत्व और भक्ति उपदेशक होना सिद्ध होता है, पर इस श्री कृष्ण में आभीरों का बाल देवता नहीं आ मिला था। वस्तुतः बाल कृष्ण की कथाएं ईसा से पूर्व खूब प्रचलित होती गई होंगी। यही नहीं, गोपियों की लीला और राधा के साथ श्री कृष्ण का संबंध भी इस युग में प्रचलित होना असंभव नहीं। हम आगे इस बात की जांच करेंगे। हरिवंश के बारे में पहले बताया जा चुका था कि इसका ख्रिस्त पूर्व होना असंभव नहीं है। इसमें कृष्ण का गोपियों के साथ केली क्रीड़ा वर्णन पाया जाता है। गाथा सप्तशती में राधा शब्द पाया जाता है। इसी ग्रंथ के अनुसार इसकी रचना विक्रमादित्य के राज में हुई थी। यह मालवा का राजा विक्रमादित्य वही है जिसने विक्रम संवत चलाया था। यह बात अब ऐतिहासिकों को अमान्य नहीं रह गई है कि विक्रमादित्य संवत का प्रवर्तक सचमुच एक ऐतिहासिक व्यक्ति था। गाथा सप्तशती में प्राचीनता के सब लक्षण हैं। उसकी प्राचीनता में संदेह करने के लिए 2 शब्द ही कुल जमा पाए गए हैं, राधिका और मंगलवार। कहा जाता है कि वार पद्धति का परिचय भारतीयों को 5वीं शताब्दी में हुआ था। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इस कथन को अयथार्थ बतलाया है, क्योंकि उन्होंने एक ताम्र पत्र पाया है जिसके अनुसार शक 52 में बृहस्पति वार शब्द का उल्लेख है। वस्तुतः वार गणना का प्रचलन तो ग्रीस में ईसा से बहुत पूर्व हो चुका था। टिबुलस नामक कवि ने ईसा से 26 वर्ष पहले वीरों की चर्चा की है। इससे पुराना अस्पष्ट उल्लेख भी मिला है जो ईसा से 96 वर्ष पूर्व का है। इससे इतना तो स्पष्ट ही है कि ईसा के पहले वारों का प्रचार भारतवर्ष में होना असंभव नहीं है। अगर यह बात स्वीकार्य है तो जो बहुत दुर्बल प्रमाणों का अवलंबित है तो गाथा सप्त सती में राधा का नाम आना सिद्ध कर सकता है कि बाल कृष्ण की कथा ईसा से बहुत पूर्व फैल चुकी थी। पंचतंत्र में भी राधा का नाम आता है। पंडितों ने इसका समय 5वीं शताब्दी में इसलिए फेंक दिया है कि इसमें राधा शब्द आता है। अब तक जिन प्रमाणों की चर्चा की गई है वे उस समय के पंडितों की युक्तियों द्वारा समर्थित हैं। प्रश्न संख्या 8। जिन्हें भास के नाटकों का ज्ञान न था, सौभाग्यवश श्री गणपति शास्त्री ने हाल ही में भास के 13 नाटकों का उद्धार किया है। इन नाटकों के उद्धार से बहुत सी प्राचीन बातों का रूप ही बदल गया है। भास के नाटकों के काल के संबंध में पंडितों में बड़ा मतभेद है। इन नाटकों के आविष्कारक श्री गणपति शास्त्री महाशय का मत है कि ये नाटक पाणिनि के भी पूर्ववर्ती है। अन्य विद्वानों ने इन्हें इतना पुराना तो नहीं मानते, परंतु श्री के पी जायसवाल ने युक्ति पूर्वक सिद्ध करना चाहा है कि इन नाटकों के कर्ता भास कर्णवंशी राजा नारायण ब्रैकेट में 53 से 71 ईस्वी पूर्व ब्रैकेट बंद के सभा कवि थे। स्टेन कोनो इन्हें ईस्वी सन की दूसरी शताब्दी से अधिक अर्वाचीन नहीं समझते और विंटरनिस्ट 3री शताब्दी के अंत में या 4थी शताब्दी के शुरू में इनका लिखा जाना अनुमान करते हैं। इस बात में सभी एक मत है कि इन नाटकों की भाषा प्राचीन अनलंकारी और सादी है। अन्य प्रबलतर युक्तियों के अभाव में हमें विद्वद्व जायसवाल का मत मान्य जान पड़ता है। इन नाटकों में से कई श्री कृष्ण के जीवन संबंधी घटनाओं के आधार पर बने हैं। बालचरित दूत वाक्य दूत घटोत्कच में सर्वत्र श्री कृष्ण परम देवत्व नारायण के रूप में अंगीकार किए गए हैं। इन नाटकों से इतना निश्चित है कि सन ईस्वी के प्रारंभ में श्री कृष्ण की बाल लीलाएं अविकल उसी रूप में वर्तमान थी जिस रूप में बाद में भागवत आदि पुराणों में पाई जाती थी। अर्थात क्राइस्ट के जन्म के बहुत पूर्व इस देश में बाल गोपाल की लीलाएं बहुत प्रचलित हो गई थी। एक उल्लेख योग्य बात इस ग्रंथ में यह भी है कि सारे नाटकों में राधा का नाम कहीं नहीं आता। नारद पंचरात्र नामक पुस्तक में भी बाल कृष्ण की महिमा गाई गई है। इस पुस्तक का एक अंश ज्ञानामृत सार संहिता, इसके अनुसार नारद कृष्ण महात्म्य सुनने के लिए कैलाश पर्वत पर शिव के पास जाते हैं। वहां उनके महल के 7 फाटकों पर यमुना कदम्ब पर श्री कृष्ण वस्त्रहरण नंगन गोपिकाएं आदि लीलाएं चित्रित थी। इस कथा के अनुसार चित्रित एक स्तंभ जोधपुर के निकट मांडोर ग्राम में पाया गया है। भंडारकर के कथना अनुसार इसका काल ईस्वी सन की 4थी शताब्दी के पहले नहीं हो सकता और उक्त संहिता तो उन्हें 16वीं शताब्दी की कृति जान पड़ती है। यद्यपि इसके लिए कोई प्रबल प्रमाण नहीं दिया गया है। पुस्तक चाहे जबकि हो पर 4थी शताब्दी में गोपियों के साथ कृष्ण की केली कथा खूब प्रचलित हो गई थी, इसमें संदेह नहीं। एक देखिए मिंटन नित्ज का सम प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन लिटरेचर कलकत्ता 1925 पृष्ठ संख्या 124। दूसरा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वार्षिक विवरण 1905-6 पृष्ठ संख्या 135 और आगे। तीसरा एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स का संडे प्रबंध। चौथा इस बात में संदेह होने का एक कारण है, भारतीय ज्योतिष ग्रंथों में सर्वत्र वार रविवार से शुरू होते हैं। इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि वार पद्धति भारतवर्ष में उस समय आई होगी जब रविवार आदि दिन माना जाने लगा होगा। पहले शनिवार ही सप्ताह का आदि दिन था। रविवार का आदि दिन के रूप में सबसे पुराना उल्लेख सन ईस्वी से 90 वर्ष बाद का पाया जाता है। पृष्ठ संख्या 9। सवाल यह है कि भागवत धर्म में यह रास कहां से आ गया। भंडारकर ने इसका विचित्र जवाब दिया है। उनके मत से आभीर जैसे घुमक्कड़ जाति में कोई सदाचार नहीं होगा। विलासी आर्यों से उनकी स्त्रियों का स्वतंत्र संबंध होता रहा होगा, क्योंकि ये स्त्रियां खूब सुंदरी होती होंगी, इसलिए श्री कृष्ण को भी असदाचारी बनना पड़ा। हमारी समझ में इस जवाब से समाधान होने की बजाय मामला और उलझ जाता है। हम इस बात का जवाब कुछ अधिक जांच के बाद देना अधिक उचित समझते हैं। जिस प्रकार वसुदेव और द्वारिकावासी कृष्ण एक ऐतिहासिक व्यक्ति से उठकर परम देवत्व के आसन पर पहुंचे हैं, राधा में इस प्रकार के ऐतिहासिक व्यक्तित्व का कोई लक्षण नहीं पाया जाता। गोपियों में तो यह है ही नहीं। फिर मती की बात यह है कि भागवत, हरिवंश और विष्णु पुराण आदि प्राचीन ग्रंथ जो गोपाल कृष्ण की कथाओं से उत्पन्न है, उसमें भी राधा का नामोल्लेख नहीं पाया जाता। दूसरी ओर गाथा सप्तशती और पंचतंत्र में इस शब्द का आना इस अनुमान को संभव कर देता है कि राधा का अस्तित्व ईस्वी सन से पहले भी असंभव नहीं है। यह भी देखा जाता है कि राधा की भक्ति का नया रूप दक्षिण से आता है। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर दो तरह के अनुमान किए जा सकते हैं। एक, राधा आभिर जाति की प्रेम देवी रही होगी जिसका संबंध बालकृष्ण से रहा होगा। आरंभ में केवल बालकृष्ण का वासुदेव कृष्ण से एकीकरण हुआ होगा, इसीलिए आर्य ग्रंथों में राधा का नाम उल्लेख नहीं है। पीछे से जब बालकृष्ण की ही प्रधानता हो गई होगी तो इस बालक देवता की सारी बातें अहिर से ले ली गई होंगी, इस प्रकार राधा की प्रधानता हो गई होगी। दूसरा अनुमान यह किया जाता है कि राधा इसी देश की किसी आर्य पूर्व जाति की प्रेम देवी रही होगी, बाद में आर्यों में इनकी प्रधानता हो गई होगी और कृष्ण के साथ इनका संबंध जोड़ दिया गया होगा। 14वीं शताब्दी के अंत में जबकि भागवत संप्रदाय अपने नए रूप में विकसित हुआ था, राधा और कृष्ण ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं थे, वे महत्वपूर्ण और संपूर्ण भाव जगत की चीज हो गए थे। इस समय रामानुज ने और बाद को मध्व, रामानंद, बल्लभ, चैतन्य आदि आचार्यों ने जिस धर्म का प्रचार किया वह भक्ति मूलक था। पृष्ठ संख्या 10। इस भक्तिवाद को लेकर पंडितों में बड़ा विवाद है। सन 1907 में ग्रियर्सन ने एक विस्तृत विवेचना के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि सन ईस्वी की तीसरी शताब्दी में सीरिया के नेस्टोरियन ईसाइयों का एक दल मालाबार के किनारे आ बसा था। सन 660 ईस्वी तक इनका कोई नियमित मठ न था। 14वीं शताब्दी में इन्होंने बपतिस्मा भी छोड़ दिया था। सेंट थॉमस पर्वत पर इनका जो तीर्थ था उसमें हिंदू भी सम्मिलित होते थे। रामानुज का जन्म और शिक्षा दीक्षा इसी पर्वत के समीपस्थ स्थानों में हुई थी, इसीलिए उनके ऊपर ईसाई भक्तिवाद का जबरदस्त प्रभाव था। रामानंद तो इस ईसाई प्रभाव के स्रोत को आकंठ पान कर चुके थे, इसलिए सारा भक्तिवाद ईसाइयों की देन है। कीथ ने ग्रियर्सन के इस मत को असंगत बताया। कैनेडी नामक पंडित ने इसे संभव बताया। यह विवाद बहुत दिन तक चलता रहा। सन 1909 में स्वयं इस ग्रियर्सन को अपनी बात में कुछ संदेह होने लगा था। एच जेकोबी ने ग्रियर्सन के आरोपों को असंगत बताया है और सुविख्यात पंडित विंटर निट्स ने यह सिद्ध कर दिया है कि भक्ति कहीं बाहर से नहीं आई बल्कि भारतीय मिट्टी में ही उसका बीज था। आर गार्वे ने यह बात स्मरण रखने की चेतावनी दी है कि गीता में ऐसा कोई विचार नहीं है जिसमें भक्ति, जिसे भारतीयों के विपुल विचार भंडार और उनकी विशेष प्रकार की मनोवृत्ति के द्वारा संतोषपूर्वक न समझाया जा सके। ग्रियर्सन ने ईसाई भक्तिवाद और सांडिल्य सूत्रों के सिद्धांतों की तुलना की थी। उनका मत कुछ कुछ इस प्रकार जान पड़ता है कि पुराने जमाने में ईसाई प्रभाव की संभावना हो या न हो, बाद को उस पर कुछ ईसाई प्रभाव जरूर पड़ा है और यह प्रभाव कृष्ण भक्ति के ऊपर उतना नहीं है जितना राम भक्ति के ऊपर। भक्तिवादियों में सबसे बड़े ईसाई तुलसीदास हैं और वृद्ध ज्ञानी कबीर भी इससे खूब प्रभावित हैं। कबीर का शब्द पर जोर देना ग्रियर्सन साहब को बाइबिल के शब्द सिद्धांत की याद दिलाए बिना नहीं रहता। वैष्णवों का महाप्रसाद वितरण भी ईसाइयों के लव फीस्ट का अनुकरण है। एक, वैष्णविज्म सैविज्म पृष्ठ संख्या 38। दो, यह बात सिद्ध हो चुकी है कि पंचतंत्र का वर्तमान रूप अपेक्षाकृत नवीन है पर इसका पुराना रूप ईस्वी पूर्व में निर्मित हुआ था। तीन, पुराणों के अनुसार राधा कृष्ण की उम्र में बड़ी थी, बालकृष्ण की कल्पना के सिवा और किसी तरह इस बात को नहीं समझाया जा सकता। चार, जयदेव 12वीं शताब्दी के काल में राधा की प्रतिष्ठा परमाशक्ति के रूप में हो चुकी थी जिसे देखकर सहज ही अनुमान होता है कि राधा बहुत पुराने काल से आदृत होंगी। पाँच, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स में भक्ति मार्ग। छह, वही अवतार शीर्षक प्रबंध। सात, हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर प्रथम भाग। आठ, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स में भगवद गीता प्रबंध। नौ, इन बातों को सन 1907-8 के विविध वाद प्रतिवाद से लिया गया है। सन 1909 में प्रकाशित इनसाइक्लोपीडिया ऑफ रे एंड ए के भक्ति मार्ग शीर्षक प्रबंध के अंत में तत्संबंधी साहित्य की चर्चा करते समय ग्रियर्सन ने लिखा है, कि अपने पूर्व मत पर वे साग्रह चिपके हुए नहीं है। प्रश्न संख्या 11। कीथ ने ग्रियर्सन की सभी बातों का जवाब दिया है। शब्द के विषय में उन्होंने कहा था कि यह वैदिक सिद्धांत है और ग्रीस में लॉगस डॉक्ट्रिन ईसा से सैकड़ों वर्ष पहले से लेकर सैकड़ों वर्ष बाद तक प्रचलित था। इस प्रकार शताब्दियों की उलटफेर के बाद प्रेम, ज्ञान, वात्सल्य, दास आदि विविध भावों के मधुर आलम्बन पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण रचित हुए। सब कुछ उनमें परिपूर्ण रूप में देखने की कोशिश की गई। माधुर्य के अतिरिक्त उद्रेक से प्रेम और भक्ति का प्याला लबालब भर गया। इसी समय ब्रजभाषा का साहित्य बनना शुरू हुआ। इस स्थान पर ब्रजभाषा काव्य की युगल मूर्ति का परिचय अपूर्ण ही रह जाएगा यदि हम तंत्रवाद और सहजवाद का रहस्य न समझ लें। तंत्र ग्रंथों के निष्णांत पंडितों ने बताया है कि तंत्र में शक्ति का रस ग्रहण शिव या आत्मा करता है। आत्मा देश और काल से परे है, वह सीमाहीन अनंत है। अनंत के इसी रूप को देश काल से सीमित शक्ति प्रकट करती है। सीमाहीन ससीम के इस खेल का नाम जगत है। शक्ति के रस को हम संपूर्ण ग्रहण नहीं कर सकते, पर स्वभावतः आत्मा अपरिसीम है। शक्ति के एक देश में रस से उसे अनंत रस का ज्ञान हो जाता है, वह अपना स्वरूप पहचानता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी को लीजिए। हम पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले सभी फूल फलों का रस नहीं ग्रहण कर सकते। आम जामुन का आस्वादन करके हम पृथ्वी के नाना रसों का अनुमान करते हैं। इस सतीम रस के आस्वादन के द्वारा हम अपरिसीम रस को हृदयगम करते हैं। स्त्री रूप से हम महाशक्ति के एक रस का साक्षात्कार करते हैं, माता रूप से दूसरे का, भगनी रूप से तीसरे का। इस प्रकार कुछ संख्या परिमित व्यक्तियों से महाशक्ति के अनंत रस का ज्ञान पाते हैं। स्त्री शब्द से भ्रम नहीं होना चाहिए। लौकिक पुरुष और स्त्री शब्द से इसका मतलब नहीं है। लोक में जिस विशेष शरीर गठन को स्त्री कहते हैं उसमें भी पुरुष या शिव की सत्ता है, और जिसे पुरुष कहते हैं उसमें भी स्त्री या शक्ति की सत्ता है। अत्यंत हीन कोटि के कुछ तांत्रिक संप्रदायों में कलुष वृत्ति का आ जाना उसकी उचित फिलॉसफी को कलंकित नहीं कर सकता। इस तंत्र तत्ववाद का प्रवेश वैष्णव संप्रदाय में भी हुआ है। इसके पूर्व ही सहज और शून्यवाद का प्रचार था। भारतीय साधना के इतिहास में इन दो शब्दों से अधिक रहस्यमय शब्द शायद नहीं है। बुद्ध देव से लेकर कबीर, दादू और रजब तक अनेक इसके अर्थ हुए हैं। सहज मत के अनुसार मनुष्य अपने सहज स्वाभाविक रास्ते में ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। युगल मूर्ति को पूर्णता तक पहुंचाने में इस मतवाद का बड़ा हाथ है। प्रश्न संख्या 12। इस बात का अनुमान बंगाल के सहज या वैष्णव संप्रदाय की एक शाखा के सिद्धांत से किया जा सकता है कि सहजवाद मत तंत्रवाद के साथ कहां तक अग्रसर हुआ था। इस मत के अनुसार 84 योजन का ब्रज मंडल और कुछ नहीं, स्त्री का 84 अंगुल का शरीर ही है, जिसमें खास ब्रज की पंच क्रोशी पंचांगुल विस्तृत अंग विशेष है। किंतु हम पाठकों से आग्रह कर देना चाहते हैं कि इस प्रकार की कुछ बातों से वे सहज संप्रदाय के उच्चतम सिद्धांतों को समझने में भूल न करें। जो तत्ववाद का साधारण लोक धर्म बन जाता है उसमें इस प्रकार की अभद्रता आ ही जाती है। सहजवादियों का मतवाद कितना ऊंचा है इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि कवि कुल गुरु रविंद्रनाथ ने संसार के विद्वत समाज के सामने अपने ह्यूवर्ट लेक्चरों में इन्हीं सहजवादियों को आगे किया था। बाउल जिनके अमर गानों से बंगला वांग्मय धन हो गया है सहजवादी है। कविवर रविंद्रनाथ की कविता और चिंताधारा बाउलों से अत्यधिक प्रभावित है। अपने ह्यूवर्ट लेक्चरों में कवि ने परिशिष्ट रूप में अध्यापक क्षिति मोहन सेन का बाउल संबंधी प्रबंध भी जोड़ दिया था। कबीर और दादू सहजवादी थे। वल्लभाचार्य और सूरदास में सहज मतवाद का अस्तित्व है। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रजभाषा काव्य के प्रारंभ काल में राधा और कृष्ण की इतिहास या तत्ववाद की चीज नहीं रह गए थे, वे संपूर्णतः जगत भाव की चीज हो गए थे। भक्ति, प्रेम और माधुर्य की नाना संपदाओं से विचित्र यह युगल मूर्ति ईश्वर का रूप तो थी ही, पर उस ईश्वर की वैदिक देवताओं का संभ्रम नहीं था, ग्रीक ओपोलो की भीति नहीं थी, इस्लामिक खुदा की तटस्थता नहीं थी, दार्शनिक ईश्वर की अद्भुतता तो एकदम नहीं थी, था एक सहज सरल घरेलू संबंध। तंत्रवाद के ससीम रस से सीमाहीन की उपलब्धि के सिद्धांत ने तात्कालिक जन समुदाय को सखा रूप से, प्रिय रूप से, स्वामी रूप से कृष्ण की उपासना के प्रति अग्रसर किया था। भागवत संप्रदाय के देव देवकी पुत्र वासुदेव कृष्ण इसके उपास्य अंश थे और आभीरों के बालक देवता इसके प्रिय रूप थे। इन दोनों रूपों में आरोपित सहजवाद, तंत्रवाद और बौद्ध विनय अननुभूत अज्ञात भावदेव की सृष्टि की जो ब्रजभाषा काव्य का उपास्य हुआ। यहीं पर कुछ रुककर हम एक बार उस युग के मनुष्यों के मनोभावों को पहचानने का यत्न करेंगे ताकि काव्य धारा का यथार्थ अनुशीलन सरल हो।